अब अगली आयत में आयत 156 में अल्लाह वजह बता रहे हैं कि अगर बिल फर्ज में ये किताब ना नाजिल करता तो क्या होता। अंतकुलु इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफतैन मिन क़ब्लिना, ये किताब क्यों नाजिल की, यानी पीछे बात हुई ना कि आपके ऊपर किताब नाजिल की, तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि अगर हम ये किताब ना उतारते तो गोया कि तुम ये कहते कि किताब तो बस उतारी गई थी हमसे पहले के दो गिरोहों पे। कौन से थे दो गिरोह? यहूद और नसारा। बिल्कुल सूरत मायदा की आयत 19 वाला स्टाइल है। वहां क्या था? अंतकुलु मा जाना मिन बशीर वला नजीर, कि हमने किताब मक्का वालों तुम्हारे पास इसलिए भेजी कि तुम कहोगे कि हमें तो कोई डराने वाला या खुशखबरियां देने वाला नहीं आया, तो लिहाजा फ़कत जाकुम बशीरुम व नज़ीर। यहाँ क्या कह दिया? हमने ये किताब उतार दी तुम पर ताकि तुम कल ये न कहो कि हमें तो कोई पढ़ाने नहीं आया। वइन कुन्ना दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम तो इसके पढ़ने पढ़ाने से ही गाफिल थे। ये ना कहना कि तौरात तो इब्रानी जुबान में उतरी थी और हमारी तो जुबान अरबी थी, हम तो जानते ही नहीं थे, हम पे तो कोई हुज्जत ही नहीं है। अच्छा आज ज़रा मैं और आप इसको लेके अपने ऊपर सोचें। चले आप तो पढ़ ही रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसे साथी को जानते हैं जो कभी निजी महफिलों में बैठ के ये बातें करते थे, कभी मौका मिले तो हमने कुरान सीखना है, बड़ा शौक़ है, बड़ा पढ़ने का दिल चाहता है, कोई हमारे भी शहर में ऐसा इंतज़ाम हो, कोई हमें भी पढ़ाए, और जब मौके आते हैं तो हम तावीलात में चले जाते हैं। चार दिन पढ़ के हम थकने लगते हैं, हम कहते हैं नहीं अब नहीं हो सकता। कभी सोचे हम सब, देखिए मुझे तो बीच में से निकाल दें, मेरी ज़ात को ना लाइएगा, मैं अपने आप को किसी 3 न 13 में लेती हूँ, लेकिन इस वक्त इस किताब को यहाँ बैठ के सीखना क्या हम सब के ऊपर अल्लाह की एक रहमत नहीं, हुज्जत नहीं, नेमत नहीं? तो क्या नेमत से फ़ायदा और लोग उठा सकते हैं? और जो नहीं उठा पा रहे, कहीं नहीं भी जा रहे, इधर नहीं है कहीं भी नहीं जा रहे, क्या उनको ज़रूरत है? मैं कहती हूँ बंदे को सीखे हुए को भी सीखने की ज़रूरत होती है। इतने लोग एड्रेस लेते हैं, इतना कुछ पूछते हैं, और जब कहें अच्छा आपको हम कल पिक कर लें, अच्छा बुजुर्ग मैं मियाँ से पूछ, वो बस मैंने 1 महीने बाद पाकिस्तान जाना है, वहाँ से आऊँगी ना फिर शुरू करूँगी। जब कोई इस स्टाइल पे आता है तो मैं कहती हूँ अभी छोड़ दो, अभी तलब नहीं आई। जिसको तलब होती है वो तो नाम सुन के तड़प पड़ता है कि जल्दी करो जल्दी करो, मुझे फ़ौरन बताओ, मैं तो इतने दिन ज़ाया कर चुकी, मुझे फ़ौरन ले चलो। कोई कहता है कोर्स शुरू हो गया, मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं हुआ, आधे से भी ज़्यादा आगे है। तो असल बात यह है कि तलब पैदा हो जाए। अल्लाह ने देखिए मक्का वालों पर हुज्जत तमाम की, आज वालों पर भी हुज्जत है कि तुम इस पढ़ने पढ़ाने से गाफिल रहते हो, बाद में कहोगे कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमने ज़ाया कर दिया। ये तो दरासती हम जिसको उर्दू में दर्स भी कहते हैं ना, इसका मन ही होता है असर छोड़ना, निशान लगाना। अब आप सोचिए कि जैसे कपड़े पे सालन गिरता है तो बाद में थोड़ा सा असर रह जाता है ना, तो दर्स क्या होता है जिसको आप कहते हैं ना हम दर्स में गए, ये अपना असर छोड़ता है। जब आप यहाँ से उठ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ उन आयतों के निशान छुटे होते हैं ना। इसकी जगह जितने साथी आप यहाँ बैठे हैं, चलिए जब से आप बैठे हैं सुबह 9:45 से लेके 2 बजे, सच बताइए कि हम रोज़ के कितने कुरान पढ़ सकते हैं? आप सबको एक एक सपारा बांटते हैं, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो हम 5 कुरान तो पढ़ के जा ही सकते हैं रोज़, इससे भी ज़्यादा। ये तो मैंने ऐसे एक रफ एस्टिमेट किया, हम रोज़ यहाँ 5 कुरान पढ़ें और उसके बाद यहाँ लच्छेदार दुआ करें, नात पढ़ें एक खूबसूरत सी और चले जाएँ, उसका कोई दर्द हमारे दिल पर रहेगा? कहेंगे चलो गई पढ़ लिया, यही आयतें आ जाए हम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, हम कहते हैं चलो सूरत पूरी हो रही है आगे चलो, आधा सपारा भी हो रहा है। तो दुआ कीजिए कि इस पढ़े हुए का असर हमारे दिलों पे आए। एक और उजर आयत 157, औ तकूलु लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु, या तुम ये ना कहो। अब देखिए यह ना का लफ्ज़ नहीं है लेकिन स्टाइल ही ये है, आप ना भी कहें तो बात समझ आती है, यानी या तुम ये कहो कि अगर हम पर किताब नाजिल की जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम तो इनसे कहीं बढ़कर हिदायत याफ्ता होते। किन से? देखो ज़रा तौरात और इंजील जिनको मिली उन्होंने तो हिदायत नहीं ली, कभी अल्लाह ताला हमें किताब देता तो हम बहुत ज़्यादा हिदायत वाले होते। लोग कहते हैं ना यही, बस अब आप देखिए कि बच्चे जो होते हैं ना अपने माँ बाप के तरीका है पेरेंटिंग पर बड़ी तनकीद करते हैं, कहते हैं हम जब माँ बाप बनेंगे ना हम ऐसा बिल्कुल नहीं पालेंगे अपने बच्चे। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप के तरीक़े तरबियत से खुश नहीं होते, हम वो नहीं गलतियाँ करेंगे जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की, और 90% जब खुद माँ बाप बनते हैं ना तो उनके बच्चों को उनसे फिर वही गिले होते हैं जो इनको अपने माँ बाप से थे। तो इंसान दूसरे को देख के कहता है मेरे पास ऐसा हो तो, ये हमारे ख़ानदान में एक सिस्टर हैं तो उनकी बेटियां थी, बेटे नहीं थे अभी, जबकि ये बात है। तो वो जब भी किसी के बच्चों को, बेटों को देखती थी तो कहती थी, तुम इनको खिलाती पिलाती नहीं हो, तुम इनका सही ख्याल नहीं रखती, मेरे बेटे होते ऐसे तो मैं तो इनको इतना मोटा कर देती। अब अल्लाह की देन देखिए, अल्लाह ने फिर इनको बेटे दिए और दो बेटे हैं और वो सिंगल पसली हैं, तो क्या भला वो माँ नहीं खिलाती पिलाती होगी। तो इंसान जब दूसरों के हालात पे होते ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है आप भी दिल में सोचते हो इनकी जगह हम पढ़ा रहे होते तो देखते क्या कमाल करते, लेकिन जब खुद पढ़ाएंगे तो फिर हमें अपनी बहुत सारी बातें समझ आएंगी। अल्लाह ताला कहते हैं चलो सारी हुज्जते तमाम, फकत जा कुम बई न तुम मे रोबी कुम व खुदाऊँ व रहमा, तय बनी इस्माइल तुम्हारे पास आ गई है बईजीना तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत। अब बात करो, तीन सिफात है बईजीना खुदाऊँ व रहमा। अल्लाह ताला इतनी प्यार से इस किताब की खूबियाँ बयान करते हैं कि अब तो आ गई है ना। कुरान पाक बईजीना कैसे है, दलील सूरत बईजीना भी है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बईजीना कहा गया। यहाँ अगर आप देखें कि बईजीना तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पे ले ले तो भी बात बनती है और किताब पे ले ले तो भी बात बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बईजीना थे, अमल की दलील थे। लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, क्योंकि बईजीना दलील को कहते हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने वो सब कुछ करके दिखाया जिसकी दावत दूसरों को देते थे, ठीक है। और बईजीना अगर आप कुरान को लें तो क्या किताब सारी बातें खोल के बयान नहीं कर रही, एक एक हुक्म खोल खोल के ये किताब बयान करती है, यानी कुछ मुबहम नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब इसको खोल के पढ़ो, तुम जिंदगी अगर बसर करना चाहते हो इस किताब की रोशनी में तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हमने कोई ना समझ में आने वाली बात नहीं बताई। यहाँ से पता चलता है कि कुरान हर एक को समझ आता है और आना चाहिए, मुश्किल तफसीरें नहीं करनी चाहिए और मुश्किल बातें नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए कि इसमें दूसरी बात क्या कह दी, हुदम व रहमा, हिदायत तो है ना, गाइडेंस। आज एक आयत में देखे 10 अहकाम मिल गए, दो आयतों में 10 अहकाम, और रहमा कैसे है किताब। मैं अक्सर हुदम व रहमा को एक थोड़े से फ़र्क के साथ सामने रखती हूँ। किताब हुदन कब बनती है, जब इसको समझ के पढ़ते हैं, तफसीर है ये आपकी। और रहमा है कब किताब, जब तजवीद के साथ पढ़ते हैं, एक एक आयत पे 10-10 नेकियाँ, एक एक लफ्ज़ पे 10-10 नेकियाँ मिली ना तो रहमतें आएंगी ज़िंदगी में। सही मखारिज सही अदायगी के साथ पढ़ेंगे तो रहमतें समेटेंगे, और सुन के लफ्ज़ों पे गौर करके अमल की बातें लेंगे तो हिदायत गाइडेंस हुदन मिलेगी। लेकिन फ़मन असलम मिम्मन कज़ब बिआयात अल्लाह वसदफ़ अन्हा, अब इस शख्स से बढ़कर ज़्यादा ज़ालिम और कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बताए और उससे रुके। आयतें आ गईं, बात समझ आ गई, लेकिन वो ना माने। कज़बा से मुराद क्या, झुठलाए, कैसे, या तो सुने ही ना, या सुन के नहीं सुनी कर दे, या सुने और ना माने। और सदफ़ अनहा क्या, कि उससे रुक गया, रुकावट बन गया। सनजिल्लज़ीना यस्दिफून आयातिना सूअल अज़ाबी बिमा कानू यस्दिफून, हम जल्द ही इन लोगों को जो हमारी इन आयतों से रोकते हैं इनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। कौन लोग रोकते हैं किताब से, बताएंगे आप लोग? आपके ख्याल में वो लोग रोकते हैं लोगों को किताब से जो नहीं आते, वो भी रोकते हैं ऑफ कोर्स, वो जो नहीं आते वो दूसरों को ना के रोकते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप खुद नहीं आते तो किसी को क्या दावत देंगे, और जो नहीं आते वो अपने ना आने के दलाइल लोगों को भी यही देंगे ना, नहीं लंबी बहुत है और छोटी बहुत है और ये बहुत है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है। लेकिन कभी कभी आने वाले भी रोकते हैं, वो कैसे रोकते हैं जी? जी आप बताइए, वो ये ताना दिलाते हैं कि ये कुरान पढ़े वो कमल है। देखिए लोग ताना देते हैं ना, ये कुरान पढ़ के आती हो, ये सिखाया तुम्हें। बाज़ दफ़ा गुस्से में घर वाले भी ताना देते हैं, बताते हैं तुम्हारे टीचरों को तुम ये करती हो, ये सिखाते हैं तुम्हारे स्कूल वाले। यानी आने वाले एक तो अपने रवैयों से रोकते हैं। मैं अक्सर एक जुमला अपने लिए कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगली आयत आ रही है उसमें तो और भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह मैं अपनी नहीं हूँ, जब अल्लाह के दीन से आपका ताल्लुक छोटा या बड़ा, ज्यादा या कम भी जुड़े ना, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। हर बंदे को पूरा इख्तियार होता है कि वो आपको तनकीद करे। अच्छा जी, हमें तो ये कहती हैं आप कैसी हैं, अच्छा आपके अपने घर वाले कैसे हैं, आपके अपने बच्चों का क्या अमल है, अच्छा जी देखो पढ़ाती भी हैं और इनकी शादियां देखो, यानी लोग फिर आपको इस तरह टॉर्च करते हैं। तो हद्दुल वसा दीन वाले को अपनी जात को कुर्बान कर देना चाहिए हर चीज को। मैं 10 चीजें गिनवा सकती हूँ कि जिसकी अल्लाह पूरी इजाजत देता है दीनदारों को, लेकिन सिर्फ इस खौफ से कि जो अभी दीन पे नहीं आए उनको समझ नहीं है, अल्लाह हम छोड़ देते हैं इनके लिए, इनकी इसलाह कर दे। यानी इंसान को कुछ तो कुर्बानियां जगहों की देनी पड़ती है ना, मक्का छोड़ के मदीना आना पड़ता है, वो तो कभी कभी होती है, एक आधी कुर्बानी है, लेकिन दीन के साथ ताल्लुक में हर दिन की कुर्बानी है। जवाब दे सकती हूँ मैं भी आपको, नहीं देना, लोग कहेंगे ये दर्स देती हैं और ये जवाब दे गई हैं, हालांकि हक था जवाब देने का, कर सकते थे, पहन सकते थे, ओढ़ सकते थे, खा सकते थे, जा सकते थे, नहीं जाना नहीं करना, क्यों? क्योंकि लोग हमें क्राइटेरियन बना के पेश करते हैं। तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। जहाज में जब आप बैठते हैं ना, तो आपको हमेशा वो कहते हैं अपना सामान ऊपर रख ले, कहते हैं ना, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ नीचे रख लें तो इतनी केयर नहीं करते। लेकिन अगर आप इमरजेंसी डोर के आगे बैठे हो ना, एग्जिट होता है वो, तो आपको होता है कि आपके हाथ का छोटा सा पर्स भी नहीं रखने देते, एक बुक भी नहीं रखने देते, वो आके उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे एग्जिट पे खड़े हैं जहाँ से लोगों को रास्ता चाहिए। बिल्कुल दीन की बात कहने सुनने या करने कराने वाले लोग भी लोगों के लिए इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप याद करें ना, इमाम बुखारी ने क्यों अशरफियों भरी थैली पानी में फेंक दी थी, क्योंकि मेरी ज़ात पे कोई धब्बा ना लग जाए। लोग कहेंगे अच्छा जी ये हदीस बयान करते हैं, यहाँ 1,000 अशरफियाँ चोरी करके बैठ गए। तो दीन का काम करने वालों को अपनी ज़ात के मामले में एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। फिर भी लोग बातें कर दें, नबियों को कर दें, इमामों को कर दें, ये लोगों की बात है, लेकिन अपनी औकात से अब आपको 10 दफ़ा सोच के जवाब दिया करें अपने शोहर को, 20 दफ़ा सोच के अपनी सास को जवाब दिया करें, 15 दफ़ा सोच के अपने बच्चे को किसी बात पे टोकें। यकीन करें, बिलीव मी, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रही, क्योंकि आप वो आपको इस कुरान के स्टूडेंट की नज़र से देख रहे हैं, आपको इस क्लास की रोशनी में देख रहे हैं। और अखीर बदनाम बाज़ दफ़ा फिर स्टूडेंट्स अपने उस्तादों को कर देते हैं या स्कूलों को कर देते हैं कि तुम्हारे स्कूल में ये, अल्लाह का शुक्र है हमारे पे तो बात कमी मैंने सुनी है, मुझे नहीं कोई पहुँचाता, करते होंगे लोग हमें भी बातें, लेकिन मैंने लोगों का नाम ले ले के लोगों को कहते सुना, फलां फलां वाले जो वो घर तोड़ाते हैं, वो तलाकें करवाते हैं, औरतों की जुबानें खुल जाती हैं। तो मैं तो मुंतजिर हूँ कि कोई हमें कहे, तो 20 क्यों लेक्चर हैं, हमारा तो मौजू एक होता है कि अपना घर बना के रखो, घर से जुड़ो, आजजी लाओ, हक पे भी हो तो मसला छोड़ दो, झगड़े छोड़ दो, क्योंकि जब तक अपनी ज़ात को लोगों के सामने ऐसे ब्लंड करके नहीं पेश करेंगे, लोग आपकी और मेरी ज़ुबान से दीन की बात नहीं लेंगे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे ज़रिए अपने दीन को और अपने दीन के ज़रिए हमें इज्जत दे, ये अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए, कि अल्लाह हमारी हालत ऐसी ना हो कि लोग हमारी वजह से दीन छोड़ दें और इसको अपोजिट भी ना हो, और अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से बचा के रखे। ऐसे लोग जिनको इतनी खूबसूरत बातें मिल भी जाएं फिर भी बात नहीं मानते, इतना बुलाओ, इतना कहो, इतना सुनाओ, इतना समझाओ, नहीं आते, तो अल्लाह कहते हैं अब इनसे पूछो, आयत 158, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतजिर हैं कि फरिश्ते इनके पास आ जाएं? लिख लें, कौन से फरिश्ते? मौत के फरिश्ते। अभी भी इतनी प्यारी किताब नहीं सुनना चाहते, अभी भी इसकी तरफ नहीं आते, अभी भी उजर इनके नहीं ख़त्म, अब एक उजर नहीं पूरा तो दूसरा, दूसरा उजर नहीं तो तीसरा, क्या ये अपने मौत के फरिश्ते को देख कर आना चाहेंगे, या फिर औयात या रब का, या अपने रब के आने के मुंतजर हैं? ये रब का आना किस दिन होगा? सूरह मारिज में हम पढ़ेंगे आगे जाके, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में आएगा, और या फिर औयात या बादआयाति रब्बिक, या फिर आ जाए बास निशानी कोई तेरे रब की। ये निशानी कौन सी है? सूरज का मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होना। सही हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो। जब ऐसा होगा और लोग उसे मगरिब से तुलू होता देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। फिर आपने यह तिलावत की, ला यन्फो नफ्सन ईमानुहा लम तकुम आमनत मिन क़ब्ल, उस वक्त किसी का ईमान लाना उसको फ़ायदा ना देगा जो पहले ना लाया। ये सही बुखारी की रिवायत है और सूरत अलनाम की इसी आयत की रोशनी में। तो क्या पता चला कि तौबा का एक वक्त होता है। आपको पता है कि जब सूरत मशरिक की बजाय मगरिब से आएगा ना, तो توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اتنی بڑی یہ نشانی ہوگی کہ اس کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں گے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ لم تکن آمنت من قبل, فائدہ نہیں دے گا ان کا ایمان ان کو. کیسے نہیں دے گا؟ لا ينفع نفسا ایمانها, نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان. لم تکن آمنت من قبل, جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے. او کسبت فی ایمانها خیرا, یا کمایا تھا انہوں نے اپنے ایمان سے بھلائیاں. ایمان موجود تھا, خیر نہیں کمائی تھی, اپنے ایمان کو احسن عمل میں نہیں ڈھالا تھا. اس وقت پھر عمل کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیا کہا جائے گا؟ قل انتظروا انا منتظرون, آپ فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو, ہم بھی منتظر ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی پہ توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کرتا اور ہدایت کا دروازہ بھی بند نہیں کرتا, لیکن قیامت کے دن سے پہلے ہی ایک وقت آئے گا کہ دروازے بند ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتاؤ کیا اب تمہیں فائدہ آنے کا کچھ موقع ملا. سورت فجر میں آتا ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, جس دن آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفیں باندھ کر. وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور لائی جائے گی اس دن جہنم. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ, اور اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, لیکن کیا ہوگا یہ نصیحت پکڑنا, اس وقت کیا فائدہ ہوگا. تو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وقت ہے, کر لیجئے. فائدہ ہوگا نہیں ہے تو کل قیامت کے دن پھر انسان تڑپے گا اور بچتائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مہلت سے فائدہ اٹھائیں. آیت نمبر 159, اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے, آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. انما امرهم الى الله, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر وہ ان کو خبر دے گا ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. پچھلی آیات میں قرآن پاک کے بینہ ہدن اور رحمہ ہونے کی بات تھی. ظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے بعد اب بات قرآنی کی ہوگی, لیکن یہاں ایک دم تفرقے بازی کی بات ہو گئی اور مختلف گروہوں میں لوگوں کے بٹنے کی بات ہے. ظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان آیات میں کوئی ربط نہیں ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو پچھلی آیت کے آخر میں کہا گیا تھا قل انتظروا انا منتظرون, کہہ دیجئے کہ آپ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. کن لوگوں کو کہا گیا تھا؟ جو توبہ میں دیر کرتے ہیں اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے وقت میں توبہ کریں گے. اسی طرح دنیا میں قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو اس کی دعوت دی, لیکن کچھ لوگ اس کتاب سے بھی دور ہو جاتے ہیں. کس چیز پر؟ چھوٹے چھوٹے گروہوں اور جماعتوں میں بٹنے کی وجہ سے. اصل میں یہاں وحدت ادیان, جس پہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی, یونی ریلیجن, آیت نمبر 213 سورۃ البقرہ میں کانن ناس امتم واحدہ, تو وہاں ذکر ہوا تھا کہ شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پہ تھے, لیکن بعد پہ انہوں نے مختلف راستے بنا دیے. بالکل ادھر بھی یہی بات ہے کہ شروع میں سب لوگ توحید پہ تھے, ایک اللہ کو ایک دین کو مانتے تھے, جس کی دعوت آج اس کتاب کے ذریعے دی جا رہی ہے. لیکن نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ نیکی ہی کے نام پہ, انسان جو نیک تھے انہی جیسے انسان تھے, انہی کے نام پر مختلف گروہوں میں بٹ گئے. ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ خود معاملہ کرے گا. مجھے اور آپ کو اپنے لیے اس میں عمل کی ایک بات لینی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جہاں قرآن اور سنت کی کوئی بات آ جائے تو وہاں کسی سے کہی ہوئی, کسی کی سنی ہوئی بات کو پیچھے کر کر دلیل کو لے جائیں, یہی بچنے کا راستہ ہے. دیکھیے کہ انسان جتنا بھی اچھا ہوگا اس سے غلطی کا احتمال ہے, لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ معصوم قرار دیتا ہے. تو جب ہم کسی کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کر رہے ہوں گے تو ذمہ داری ہم سے ہٹ کر ان لوگوں پہ چلی جائے گی جنہوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو. یہ وقت بحثوں میں پڑھنے کا نہیں ہے, فرقے واریت میں پڑھ کر نیکیوں کے موقع کھونے کا نام نہیں, کیونکہ بعض دفعہ لوگ دین کے نام پر مدد بھی تبھی کرتے ہیں جب کسی کا اپنا فرقہ یا جماعت یا اپنا پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹتا ہے تو بہت سارے نیکی کے مواقع खो देता है।